जब से ईशिका को प्रणय पर शक हुआ था वो उस पर नज़र रख रही थी और ये बात प्रणय से छुपी हुई नहीं थी। ईशिका को इतना कॉन्फिडेंट देखकर एक पल के लिए प्रणय को यही लगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है और उसने प्रणय को पहचान लिया है। प्रणय इतना आगे आने के बाद अपनी प्लानिंग में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो ऑफिस से फ्री होते ही तुरंत मुंबई पहुंचा और रात के वक्त किसी से मिलने के लिए जा रहा था। प्रणय रात के 2 बजे के करीब स्कॉट एंटरप्राइजेज में पहुंचा, वही जगह जहां ईशिका अपने एक्सीडेंट से पहले इंस्पेक्शन के लिए गई थी। वो जगह पिछली बार से पूरी तरह अलग नजर आ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों की नज़रों में वो कंपनी बंद हो चुकी थी। प्रणय ने अंदर घुसने से पहले एक बार इधर उधर देखा और फिर आसपास किसी को ना पाकर वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ रहा था। अंदर जाकर वो सीधा हेड ऑफिस में गया और जाकर उसने हल्के से सिर झुकाया। उसके सामने 2 आदमी बैठे हुए थे, मिस्टर जॉनसन, मिस्टर हरचंदानी, प्रणय ने ऊपर की तरफ देखकर कहा। वही 2 आदमी थे जो स्कॉट एंटरप्राइजेज और बाकी इंटरनेशनल कंपनियों के असली कर्ता धरता थे, विलियम जॉनसन और विपिन हरचंदानी, 2 खास दोस्त जो उम्र में 40 साल के करीब थे। इतने अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाया है तो उम्मीद है कि तुम्हारे पास सबूत होंगे, वरना यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, विपिन ने प्रणय को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा और टेबल पर रखी रिवॉल्वर को अपने हाथ में उठा लिया था। हालांकि विपिन रिवॉल्वर से खेल रहा था, लेकिन फिर भी प्रणय को डर लग रहा था। उसने थूक निगला और एक नज़र विलियम की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि वो विपिन को शांत रहने को कहेगा। मुझे इस तरह मत देखो, विलियम ने आंखें घुमाकर कहा, मुझे तो तुम पहले दिन से ही यूजलेस लगे थे। इतने दिनों में भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैं तो तुम्हें कब का मार देता, बस विपिन की वजह से रुका हुआ था। कोई बात नहीं विली, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, विपिन ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। प्रणय उनके साथ काफी वक्त से जुड़ा हुआ था, वो जानता था कि वे दोनों ही कितने सनकी हैं। उन दोनों ने काफी सारी कंपनियों को फंड देने के बहाने अपने इलीगल कामों से जोड़ रखा था। किसे पता था कि आशिका कुछ ही घंटों में उनके इतने बड़े अंपायर की रेप्यूटेशन दांव पर लगा देगी। उन दोनों के सामने अपनी बात रख पाना प्रणय के लिए आसान नहीं था। उसने हिम्मत बटोरी और कहा, इस बार मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है। आपने कहा था कि अभिमन्यु राजवंशी अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ कोई, प्रणय बोल रहा था तब उसकी बात बीच में काटते हुए विपिन ने तेज आवाज में कहा, नाम? आशिका, ऐश, प्रणय हड़बड़ाकर बोला। डार्क वेब की हैकर ऐश, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसका नाम आशिका है। लगभग 3 महीने पहले राजवंश एम्पायर की सिक्योरिटी पर साइबर अटैक हुआ था, और ऐसे में उसने ही अभिमन्यु राजवंश की मदद की थी। मैंने उसे देखा नहीं है, पर जरूर इसके पीछे वही होगी। इतना कहकर प्रणय चुप हो गया था। वहीं विपिन और विलियम ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐश का नाम उनके लिए नया नहीं था, वे हमेशा से उसे अपनी फील्ड में चाहते थे, पर बदकिस्मती से कोई नहीं जानता था कि ऐश कौन है। अगर सच में इसके पीछे ऐश है तो समझ लो न सिर्फ तुम्हारी जान बच गई, बल्कि उसकी फोटो लाने और उसे हम तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विपिन ने सिर हिलाकर कहा। उसके बाद उसने विलियम की तरफ देखा। हर बार विलियम प्रणय को बचाने या उसके काम के खिलाफ ही रहता था। आज पहली बार विलियम प्रणय के काम से खुश नजर आ रहा था। ठीक है, खुद को लकी समझो जो ऐश के नाम पर तुम्हारी जान बच गई। तुम चाहते थे ना कि हम जल्द से जल्द एक्शन ले, तो तुम्हें हमें ऐश तक पहुंचाना होगा। जैसे ही हमें उसके बारे में पता चलेगा, उसके 1 घंटे में अभिमन्यु राजवंश वहां से गायब होगा, विलियम ने उसे वादा करते हुए कहा। और ईशिका राजवंश, प्रणय जल्दी से बोला, फिलहाल डॉक्टर मर्चेंट से ज्यादा जरूरी हमारे लिए ऐश है, जो न सिर्फ हमारा बिगड़ा हुआ काम सुधारेगी बल्कि फ्यूचर में भी काम आएगी। डॉक्टर मर्चेंट पर नजर रखने के लिए तुम हो ही, विलियम ने जवाब दिया। कुछ देर की बातचीत के बाद उन दोनों ने प्रणय को अच्छे खासे पैसे दिए और फिर प्रणय वहां से जा चुका था। उसका अगला कदम आशिका के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उन्हें देनी थी। प्रणय के वहां से निकलते ही विलियम ने विपिन की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी काम आएगा? उसने जो भी काम किया है वो हमारे लिए मुसीबत ही बना है, लेकिन इस बार की इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। जो साइबर अटैक हुआ था और राजवंश एम्पायर के शेयर्स नीचे आए थे, उसके बारे में हर कोई जानता है, और अचानक ही कुछ घंटों में सब सही हो गया था, ये हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती, विपिन गंभीर स्वर में बोला। हाँ, बस इसी वजह से चुप हूँ, विलियम ने जवाब दिया। उन दोनों ने फिलहाल यही फैसला किया कि वे प्रणय की आशिका के बारे में पता लगाने का इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ आशिका को एजेंसी में काम करते हुए लगभग 5 दिन बीत चुके थे, और इन 5 दिनों में उसने मुश्किल से ही थोड़ा बहुत आराम किया होगा। जो कोर्ट रेट की सिचुएशन आई थी उसे आशिका काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी। जहां एक तरफ आशिका काम में डूबी हुई थी, वहीं कैप्टन विराज इस वक्त हेड ऑफिसर्स की टीम के साथ मीटिंग में थे। उनमें एक गर्व भी था और वो स्क्रीन से आशिका को मॉनिटर कर रहे थे। जिस तरह से आशिका अपना काम परफेक्टली कर रही थी, गर्व के चेहरे पर प्राउड स्माइल थी। दिस गर्ल इज रियली अमेजिंग, विराज ने आशिका की तारीफ में कहा। हर कोई जानता था कि विराज के मुंह से तारीफ के दो शब्द सुनना कितना मुश्किल होता था। विराज के मुंह से आशिका की तारीफ सुनकर गर्व की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई थी। विराज ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ये हमेशा हमारे लिए काम करे तो इस तरह की सिचुएशन कभी क्रिएट ही ना हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम उसे यहाँ काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तरीका चाहे अनएथिकल ही क्यों ना हो, दूसरे ऑफिसर ने सुझाव दिया। हाँ, वैसे भी इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है उससे यही पता चलता है कि इसकी पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं है। इसकी माँ दूसरी शादी कर चुकी है और बचपन में ही उसे घर से निकाल दिया था। फैमिली के नाम पर इसका कोई नहीं है, फिर इसे ट्रैप करना भी आसान होगा, वहाँ खड़े एक और ऑफिसर ने कहा। वो एजेंसी भले ही देश की सुरक्षा के लिए काम करती हो, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि उनके काम करने का तरीका उतना भी साफ नहीं था। उन सब की बातें सुनकर गर्व ने तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और कहा, अगर ये इतना आसान होता तो कैप्टन विराज अब तक कर चुके होते। आपको क्या लगता है ऑफिसर्स, एक कम उम्र की लड़की जो अपनी उंगलियों से दुनिया को इधर उधर करने की ताकत रखती हो, क्या उसे इतना आसान है ट्रैप करना? गर्व बिल्कुल ठीक कह रहा है, विराज ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। वी कांट फोर्स हर, और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में कभी यहाँ हमेशा के लिए काम करने को हाँ कहेगी। गर्व ने विराज की बात को आगे बढ़ाया, हम उसे किसी न किसी बहाने से रोक ही सकते हैं, हमेशा के लिए ना सही पर लंबे टाइम के लिए रोकना मुश्किल नहीं है, और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं कैप्टन विराज, एक लेडी ऑफिसर ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि जो क्रिटिकल सिचुएशन आई थी थैंक्स टू ऐश की वो आराम से हैंडल हो गई है, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन और काम करने के बाद वो सिक्योरिटी को टाइट कर देगी, उसके बाद उसे रोकना आसान नहीं होगा, कैप्टन विराज बोले। काफी देर तक उनके बीच यही डिस्कशन चलता रहा कि कैसे वे आशिका को उनके साथ काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। गर्व ने अपना पक्ष रख दिया था, हालांकि पूरी मीटिंग में वो ज्यादा बोला नहीं था।
मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जब लंच टाइम हुआ तब गर्व आशिका के पास जा रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, ये सच है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐश हमेशा के लिए हमारे साथ काम करे, पर इस तरह बिल्कुल नहीं। मुझे आशिका को अवेयर करना होगा कि वे उसे ट्रैप करने का प्लान कर रहे हैं। उन सबकी चालों से बेखबर आशिका अपने काम में लगी हुई थी, तभी गर्व वहां पहुंचा। गर्व सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह सकता था, चारों तरफ सिक्योरिटी थी। लंच के लिए चले, गर्व ने पूछा। यहाँ का खाना बहुत बोरिंग है और मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने की परमिशन मिलेगी, आशिका ने जवाब दिया, हालांकि उसका ध्यान अभी भी स्क्रीन पर लगा हुआ था और उसने गर्व की तरफ देखा तक नहीं था। और अगर बाहर खाना खाने जाने का मौका मिले तो, गर्व ने हल्का मुस्कुराकर पूछा, जिससे आशिका के हाथ रुक गए थे और उसने तुरंत गर्व की तरफ देखा। क्या ये सच में पॉसिबल है? आशिका हल्का हैरानी जताते हुए बोली। अगर वो वहां से बाहर जा सकती थी तो ये भी पॉसिबल था कि वहां जाकर वो आराम से अभिमान से कॉन्टैक्ट कर सकती थी। कैप्टन गर्व की गर्लफ्रेंड को भला कौन उनके साथ लंच डेट पर जाने से रोक सकता है? गर्व ने आई विंक करके कहा, जिस पर आशिका उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। एक नॉर्मल से लंच ब्रेक के लिए मुझे किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना है, आशिका ने मुंह बनाकर कहा। गर्व आशिका के पास आया और उसे अपने करीब खींच लिया था। उसकी हरकत पर आशिका उसके पेट में जोरदार किक करने वाली थी, तभी गर्व ने उसके कान में धीमी आवाज में कहा, इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ड्रामा करने में क्या दिक्कत है? कोड रेड सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी को ही नहीं, तुम्हारी लाइफ सिक्योरिटी में भी आने को तैयार बैठा है। गर्व ने अपने इशारे से आशिका को बहुत कुछ बता दिया था और पूरी बात करने के लिए आशिका के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आशिका जानती थी कि कोई ना कोई उन्हें जरूर मॉनिटर कर रहा होगा। उसने मुस्कुराते हुए गर्व को हक किया, दैट्स माई गर्ल, गर्व मुस्कुराकर बोला और आशिका से अलग होकर उसे कुछ देर में तैयार होने का कहकर चला गया था। आखिर उसे कैप्टन विराज से परमिशन जो लेनी थी। जहां गर्व आशिका के साथ बाहर जाने के लिए एक्साइटेड था, तो वहीं इस वक्त आशिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज कुछ भी हो जाए मैं अभिमान से बात करके रहूंगी, आशिका ने मन ही मन कहा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबने समीक्षा का टारगेट लगभग पूरा कर दिया था, तो मैंने भी बिना गैप के चैप्टर दे दिया है। क्या गर्व आशिका को बचा पाएगा? और लगता है आशिका अभिमान को उससे ज्यादा मिस कर रही है, और अब अभिमान की जिंदगी में फाइनली कुछ खुशी के पल आने वाले हैं। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।